परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो, प्रभु तेरा प्यार सारे जहां में हो, प्रभु तेरा नाम सारे दिलों में हो। मैं जीऊंगा तेरे लिए,
प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे और आज के इस बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। मित्रों, पिछले अध्ययन में उत्पत्ति 19 के कुछ पदों को हमने देखा था, जिसमें हमने याकूब को राहेल के लिए सेवा करते देखा था। आज हम देखेंगे कि लाबान याकूब के विवाह में धोखा करता है, राहेल के स्थान पर उसकी बड़ी बहन लिया को उसे विवाह में देता है। तो आइए हम देखें कि मामा लाबान क्या कर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय उसके 23 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि संध्या के समय वह अपनी पुत्री लिया को लेकर याकूब के पास आया। तब याकूब उसके पास गया। लाबान ने अपनी दासी जिल्पा अपनी बेटी लिया को दे दी कि वह उसकी दासी हो। सवेरे जब याकूब ने देखा कि यह तो लिया है, तब उसने लाबान से पूछा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? क्या मैंने तेरी सेवा राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मेरे साथ छल क्यों किया? परंतु लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है कि बड़ी से पहले छोटी का विवाह किया जाए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में विवाह के समय दुल्हन लंबा घूंघट निकालती थी, जिससे चेहरे बिल्कुल नहीं दिखते थे। बेचारा याकूब दुल्हन का चेहरा नहीं देख सका जिससे वह शादी कर रहा था, जब तक कि अगली सुबह ना आ गई। वे राहेल नहीं थी, वह लिया थी। जैसे ही उसने चेहरे को देखा, उसे मालूम हो गया कि उसके साथ धोखा किया गया है। मैं आश्चर्य करता हूं कि क्या उसने अपने उस बीते हुए दिन को याद किया होगा या नहीं, जब याकूब ने अपने पिता के सामने स्वयं को बड़ा बेटा के रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें धोखा दिया था। उसने अपने पिता को धोखा दिया और इसी कारण से उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर उस प्रकार की कार्य को स्वीकृति नहीं देते हैं। उसके अपने जीवन में समस्याओं की शुरुआत हुई है। याकूब ने बड़े होने का दिखावा किया जबकि वह छोटा था, और अब वह यहाँ पर सोच रहा था कि वह छोटी लड़की से विवाह कर रहा है, लेकिन वह बड़ी बेटी थी। तब तख्ता पलट गया और याकूब के लिए यह एक भयानक बात हो गई। इस समय याकूब की दृष्टि में यह एक अपराध है जो लाबान ने उसके प्रति किया है। लेकिन आप ध्यान दें कि मामा लाबान किस रीति से इसे पार लगा देते हैं, क्योंकि वह इस प्रकार के कार्यों में अनुभवी व्यक्ति हैं। वह याकूब से कहता है कि इस हमारे इकरारनामे में एक छोटी सी बात है, एक शर्त है जिसे वह याकूब को याद दिलाना भूल गया था। वो यह है कि उस देश की प्रथा के अनुसार पहले बड़ी बेटी का विवाह होता है, तब जाकर छोटी बेटी का विवाह हो सकता है। इससे पहले छोटी बेटी का विवाह नहीं हो सकता। परंतु मामा लाबान वह अपनी बातचीत में बहुत उदारता दिखाता है, इसलिए उसके पास याकूब को देने के लिए कुछ और है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 27 पद में पढ़ते हैं, पहले इसका सप्ताह तो पूरा कर, तब हम यह दूसरी भी तुझे उस सेवा में दे देंगे जो तू 7 वर्ष मेरे साथ रहकर करेगा। यह सप्ताह और दूसरे सप्ताह वर्षों को दर्शाता है। मामा लाबान अपने पैसे की कीमत प्राप्त कर रहा है कि नहीं? हाँ, और बेचारा याकूब वास्तव में एक स्कूल जा रहा है, परंतु अब वो दो पत्नियां कर रहा है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। इसके समाप्त होने से पहले ही वह समस्या में फंसेगा। हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, याकूब ने ऐसा ही करके उसका सप्ताह पूरा किया, तब लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को उसकी पत्नी होने के लिए दे दिया। मित्रों, मामा लाबान ने याकूब को दो बार सेवा करने के लिए कहा, जब तक कि वह सहमत नहीं हो गया। 7 साल काफी लंबा समय है, परंतु मेरा विश्वास कीजिए कि 14 साल एक बहुत लंबा समय है। इसके द्वारा याकूब को दो पत्नियां मिली। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि यह सब बाइबल में लिखा है, इसलिए परमेश्वर एक से अधिक पत्नी रखने की स्वीकृति देते हैं। जी नहीं, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने सबको स्वीकृति नहीं दी है, और हो सकता है कि यह आपको चौंका दे। उदाहरण के लिए देखें कि परमेश्वर ने शैतान के झूठ को स्वीकृति नहीं दी, परमेश्वर ने दाऊद के पाप को स्वीकृति नहीं दी, और बाद में उसने उसका न्याय किया। परंतु दोनों ही लेख ईश्वर प्रेरणा द्वारा लिखे गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर ने लेखक से होकर बातें कही। मूसा ने वही लिखा जो परमेश्वर कहना चाहता था। जो चीजें प्रेरणा में मिले उसे लिखित रूप में रख लिया गया, जो परमेश्वर का वचन है। मूसा को परमेश्वर ने वचन दिया कि लिखे, और उसने लिखा, जिसे हम बाइबल कहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय में परमेश्वर बिल्कुल सही लेख को दर्शाते हैं। याकूब की दो पत्नियां थी, और बाइबल हमें बताती है कि यह किस प्रकार हुआ। यही वह स्थान है जहां पर प्रेरणा की बात आती है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि परमेश्वर ने सारी बातों को स्वीकृति दे दी है। जो भी बाइबल में लिखा गया है, निश्चय ही परमेश्वर याकूब से नाखुश थे कि उसने दो पत्नियां की, उसने स्वीकृति नहीं दी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बाद या यहां से याकूब के जीवन व परिवार में बहुत सी रुकावटें व परेशानियां आई, और यदि हम देखें तो पता लगेगा कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पुराने विधियों का प्रयोग किया। चूजे घर में बसेरा करने या भूनने के लिए आ रही है। मित्रों, हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 29 अध्याय उसके 31 और 32 पद में पढ़ते हैं, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही। सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। मित्रों, लिया एक दुखी स्त्री थी क्योंकि याकूब लिया से ज्यादा राहेल से प्रेम करता था, और वह इतना ही जानती थी। इसलिए जब लिया एक पुत्र रूबेन की माता बनी तो उसके हृदय में आनंद आ गया, और उसे लगता है कि अब याकूब उससे प्रेम करेगा। मित्रों, रूबेन याकूब का पहला पुत्र है, लेकिन वह यह नहीं है जिसके वंश से यीशु का आगमन होगा। इसके विपरीत लिया का सबसे आखिरी पुत्र यहूदा के वंश में से यीशु मसीह का आना होगा। लिया के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, रूबेन, सिमोन, लेवी और यहूदा। यहूदा राजा का वंश था, दाऊद इसी वंश से था, और बाद में स्वयं यीशु मसीह भी शारीरिक रीति से या शारीरिक रूप में इसी वंश से आए। रूबेन ने अपने पहलौठेपन के अधिकार को खो दिया अपने ही पापों के कारण। लेवी पुरोहित गोत्र से था। लिया याकूब के कुछ खास बच्चों की माता थी। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 29 भी समाप्त होता है, और हम अपने अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ाते हुए उत्पत्ति 30 अध्याय में जाएंगे। जब हम इस अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि याकूब के पाप के बावजूद भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर उसके पापों के कारण से कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु उसके पापों के बावजूद कार्य कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है, याकूब का परिवार और उसके पुत्रों का जन्म। याकूब लाबान को छोड़ने की इच्छा करता है, और याकूब लाबान के साथ एक चालाकी वाला सौदा करता है। ये सब इसी अध्याय में पाए जाते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 30 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि उन दिनों में जिस स्त्री की संतान नहीं होती थी उसे अपमानित किया जाता था, जब तक कि उसके पास कोई पुत्र उत्पन्न न हो जाए। जिसके पास अधिक बच्चे होते थे उसे सबसे अधिक अच्छा माना जाता था। उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा ही घर बसेगा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब और राहेल उन दिनों की परंपरा को अपना रहे हैं। इस बात को याद करें कि सारा और इब्राहिम ने भी ऐसा ही किया था। उस समय परमेश्वर ने इसे स्वीकृति नहीं दी थी और वह अभी भी उसे स्वीकृति नहीं देने जा रहे हैं। बाइबल में हमें वास्तविक वृतांत दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे स्वीकृति दे दी। वास्तव में यह सही है कि उसने इसे स्वीकार नहीं किया। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि इब्राहिम के परिवार में संघर्ष था और यह संघर्ष इसहाक के परिवार में भी था, और अब यह संघर्ष या समस्या याकूब के परिवार में भी आरंभ हो चुकी है और वह वहां और अधिक परेशानी या संघर्ष निर्माण करने वाला है। अगला पद हमें बताता है कि याकूब के और 2 पुत्र विल्हा से उत्पन्न हुए और राहेल की दासी जिल्पा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, लिया की दासी और तब लिया के द्वारा भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय उसके 22 से 24 पद में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, सो वह गर्भवती हुई और उसके 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। सो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे 1 पुत्र और भी देगा। मित्र, यही वो लड़का है जो मिस्र देश को जाएगा। हम इसे बाद में इसी पुस्तक में देखेंगे, जैसे कि वह एक बिल्कुल विलक्षण या असाधारण व्यक्ति है। इसके बाद में राहेल से बिन्यामीन का जन्म होगा। हम इस अध्याय का समापन याकूब के 12 पुत्रों के जन्म के साथ करेंगे, क्योंकि वे सभी महत्वपूर्ण हैं। इसराइल के 12 गोत्र इन्हें पुत्रों में से आएंगे और अंत में इसराइल देश भी इसी में से होगा। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 25 और 26 पद में याकूब के लाबान को छोड़ने की तैयारी को देखते हैं। तो आइए हम इस पद को पढ़ें। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के वाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। मित्रों, अब यहाँ पर मामा लाबान की सुनिए कि वह अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, जिसे आप भी देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहाँ रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। मित्रों, यह बहुत ही रुचिदायक बात है और मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। गरार के राजा अबीमेलेक ने इस बात को पाया कि जब इसहाक उसके नगर में था तब वह भी आशीषित हुआ, और अब मामा लाबान ने इस बात को जान लिया है कि याकूब के साथ परमेश्वर है और उसने याकूब के कारण उसे भी आशीष दी है। इसलिए मामा लाबान कहते हैं कि मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने आशीषों को प्राप्त किया, तुम्हारी मजदूरी को और भी बढ़ा दो। उत्पत्ति 30 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, फिर उसने अर्थात लाबान ने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। अब इस समय तक याकूब अच्छी तरह जान चुका था कि मामा लाबान जो भी सौदा करते हैं उसमें विजेता वही होते हैं। याकूब ने इस बात को सीख लिया है, इसलिए वहां से जाना चाहता है। हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय के 29 और 30 पद में पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब वे कितने हो गए, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। मित्रों, यहां पर याकूब की शिकायत को सुनिए कि वह कह रहा है कि अब तक की सेवकाई में मुझे तुमसे 2 पत्नियां उनकी दासियों के साथ और घर भर के बच्चे मिले हैं। वास्तव में इस समय उसके पास 11 बच्चे थे। वह संसार में क्या करने जा रहा है, वह उनकी देखभाल कैसे करने जा रहा है। वह कहता है, परमेश्वर ने आशीषित किया है और उसी ने तुम्हें प्रस्तावित भी किया है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति पद में, उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं, याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच में से होकर निकलूंगा और जो भेड़ व बकरी चित्ती वाले या चितकबरी हो और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी व चित्ती वाली हो उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि जो बिना चित्ती व चितकबरी वाली सभी भेड़ बकरियां लाबान की होंगी और चित्ती व चित्ती वाली व काली सब याकूब की होगी। याकूब ने कहा, ये सब मुझे दे दे और यही मेरी मजदूरी होगी। यह लाबान के लिए सुंदर लगने वाला प्रस्ताव था। तो आइए हम उत्पत्ति 30 अध्याय के 33 से 35 पद को पढ़ें। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली न हो सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। मित्रों, वे दूसरे भेड़ों व बकरियों के साथ बच्चे पैदा नहीं कर सके। वह चित्ती और चितकबरी को अलग रखता था ताकि वे बच्चे जनने के लिए बिना चित्ती वाले के पास ना चले जाएं, जो लाबान की हैं। इसलिए वह उनसे अलग रखता था और वे जो अलग की गई थी वे याकूब की थी। यहाँ पर याकूब एक बहुत ही रोचक सौदा कर रहा है। लेकिन आइए अब हम उत्पत्ति 30 अध्याय उसके 36 से 39 पदों को पढ़ें। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर याकूब ठहराया। सो याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा और याकूब ने चनार और बादाम और अरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। मित्रों, इसके बहुत से स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा संसार में कुछ नहीं है, परंतु पूरा अंधविश्वास है। और कुछ लोगों का कहना है कि पुराने समय में बूढ़ियों की कहानियां हैं और निश्चित रूप से इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि यह बाइबल के वचनों में शामिल की जाए। मेरा अपना मत है कि यह आवश्यक है और इसको परमेश्वर के वचन में शामिल किया गया है, यह सही है। यद्यपि इसमें भी कुछ वंश की सत्यता शामिल है, लेकिन मैं यह महसूस नहीं करता हूं कि हमें अंधविश्वास कहकर इसे अलग कर देना चाहिए। यहां पर मुख्य विषय यह है कि दोनों ही लाबान और याकूब विश्वास करते हैं कि उस छड़ी के द्वारा या कारण से ही ये बकरी और भेड़ धारीदार व चित्ती वाली बन गई। यही इस कहानी का विशेष भाग है। हो सकता है कि आप ईश्वर विश्वास करते हैं, परंतु ये दोनों ही विश्वास करते थे। याकूब यहां पर अपनी चतुराई का प्रयोग कर रहा है, चाहे इसका महत्व हो या ना हो, सफलता मिले या ना मिले, क्योंकि वह पहले से ही धोखेबाज रहा है। लेकिन उसकी मुलाकात एक ऐसे मामा से हुई है जो उससे भी अधिक चतुर और धोखेबाज है और अब याकूब वापस आने की कोशिश कर रहा है। मित्रों, इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि उसमें पूर्ण घटना का जिक्र किया गया है। अब आइए हम याकूब के 12 पुत्रों की सूची को देखें जिनसे इसराइल देश का और 12 गोत्र का बनना है। लिया से उत्पन्न पुत्र और पुत्रियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला रूबेन, दूसरा शमौन, तीसरा लेवी, चौथा यहूदा, पांचवा इस्साकर, छठवा जबुलून, सातवां दीना जो उसकी पुत्री थी। ये ही लिया से उत्पन्न याकूब के संतान हैं। और अब राहेल की दासी विल्हा से उत्पन्न याकूब के संतान ये हैं, पहला दान और दूसरा नप्ताली। और अब लिया की दासी जिल्पा से याकूब के संतान ये हैं, पहला गाद और दूसरा अशेर। और राहेल से याकूब के 2 पुत्र हुए, पहला यूसुफ और दूसरा बिन्यामिन। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए, इन 12 पुत्रों से याकूब के दोनों हाथ भरे हुए थे, अर्थात उसकी परिपूर्णता थी। और हम देखते हैं कि एक पुत्री भी थी जिसका नाम दीना था। मित्रों, ये ही याकूब के संतान है। अब हम अगले अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर याकूब को हारान देश में से निकालकर पुनः इब्राहिम को दिए गए प्रतिज्ञा के देश में, जिसे इसहाक और याकूब को देने के लिए कहा था, वापस लाते हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि परमेश्वर याकूब के पुत्रों के बारे में भी यही सोच रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि याकूब के पुत्र लाबान की छत्र छाया में रहकर पलें और बढ़ें, इसलिए वह उन्हें वहां से निकाल कर ले जाना चाहते थे। हम अध्याय 31 में देखते हैं कि याकूब लाबान को बिना कुछ बताए ही घर छोड़कर चला जाता है। यह फ्रांस के लोगों की तरह है, जो किसी प्रकार की कोई विदाई पार्टी नहीं रखते, वह लेते हैं। याकूब के जाने के बाद लाबान उसका पीछा करता है और उससे भी आगे निकल जाता है और अंततः दोनों एक दूसरे से और एक सौदा करते हैं। इस समय एक दूसरे को धोखा देने व दुख पहुंचाने के लिए नहीं था। इसके बाद वे बाहरी रूप से एक दूसरे के दोस्त की तरह विदा होते हैं, अर्थात अपना अपना रास्ता लेते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब को उस देश से बाहर निकालना चाहते थे। उसने इस बात को जान लिया कि याकूब और उसके परिवार का लाबान के घर व परिवार के साथ रहना उनके बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि याकूब के 12 पुत्र थे, अर्थात 12 गोत्र, जो इसराइल के मूल पुरुष होने जा रहे थे, और परमेश्वर उन्हें इस वातावरण से बाहर निकालने के लिए उत्सुक थे, ताकि उन्हें वापस इब्राहिम के देश में ले आए, जिसे उसने इब्राहिम को देने की प्रतिज्ञा की थी। मित्रों, हम परमेश्वर के वचन वाले हिस्से में हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें दिया है। यह उन लोगों से बातचीत करता है जो लोग कई तरह से पापी हैं और परमेश्वर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं और आप भी इससे साहस प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हम लोगों को भी कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम उसके पास आते रहेंगे। वह हमेशा ही हमें स्वीकार करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यदि परमेश्वर याकूब जैसे व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, तो मेरे और आपके जैसे व्यक्ति को वह स्वीकार क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वह आपको क्यों नहीं अपना सकते हैं? आप याकूब के उन 20 वर्षों को याद कीजिए, जिसे उसने अपने मामा लाबान के यहाँ दुख में बिताए थे। मामा लाबान ने वास्तव में उसे एक कठिन काम सौंप दिया था और याकूब दबाव में होने के बावजूद भी वह उसे पूरा करने में लगा था। जो भी हो, एक नया सौदा उसने अपने मामा से भेड़ बकरियों के बारे में किया और अब याकूब अपने मामा से भी अधिक भेड़ बकरियां प्राप्त कर रहा है। मामा लाबान और उसके पुत्र इस बात को पसंद नहीं करते थे कि याकूब उनसे भी अधिक प्राप्त करे। मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ते हैं। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। मित्रों, अब याकूब को परमेश्वर का बुलावा आया। उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा। मित्रों, परमेश्वर ने याकूब को वह स्थान छोड़ने के लिए कहा और अब याकूब उसकी तैयारी कर रहा है। वह राहेल और लिया को मैदान में ही बुलाता है, क्योंकि उसे उसके घर के लोगों के सामने बात करने में डर लग रहा था कि कहीं उसके नौकर या लाबान के पुत्र उनकी बातों को न सुन ले। याकूब नहीं चाहता था कि लोग उसे लिया और राहेल के साथ योजना बनाते हुए देखें। अब हम आगे उत्पत्ति 31 अध्याय के 5 और 6 पद में पढ़ते हैं। तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की तरह अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। मित्रों, याकूब की इस बात पर हम सब राजी हो सकते हैं कि उसने सही में एक कठिन सेवा अपने मामा को दी है। याकूब ने बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन मेरी सलाह है कि इसके लिए लाबान को सराहना चाहिए जिसने उससे काम करवाया। मैं समझता हूं कि लाबान अपना खर्च वहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा निकलवा लेता था, अर्थात जितना वह देता था उसे प्राप्त भी कर लेता था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि याकूब के 20 वर्ष की सेवा में लाबान ने 10 बार याकूब की मजदूरी बदली। बेचारा याकूब, जब वह हताश और उलझन में था और नहीं जानता था कि किधर जाना है, तब परमेश्वर उसके दिशा निर्देशन के लिए मध्य में आए अर्थात हस्तक्षेप करते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 8 और 9 पद को पढ़ें। जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। यहां पर याकूब लिया और राहेल को बता रहा है कि किस प्रकार उसके पिता ने उसे परेशान किया, लेकिन परमेश्वर उसे आशीष देता रहा। और अब यहां तक कि लाबान और उसके पुत्र याकूब से ईर्ष्या करने लगे और यहां तक कि वे उससे घृणा करते थे। अब आगे हम देखते हैं कि याकूब घर छोड़कर जाने के सही कारण को बताता है। आइए हम उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 11 और 12 पद को पढ़ें। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब, मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। मित्रों, आप लोग संभवतः यह सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले अध्याय में एक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि इन जन्म देने वाली भेड़ बकरियों का स्थान किसने लिया या क्या हुआ। मैं पवित्र शास्त्र के इस वचन तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने कर दिया। मुझे और आपको साधारण व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि मैं विश्वास करता हूं कि दोनों में से एक का परमेश्वर ने अवश्य उपयोग किया। जो भी हो, जब तक परमेश्वर हमें यह नहीं बताते कि वह कौन है, हम साधारणता नहीं जान सकते हैं। इसकी बहुत सी स्पष्टीकरण है और आप इनमें से एक अपने लिए ले सकते हैं, परंतु मैं इसे पसंद करता हूं। परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ लाबान तुझसे करता है मैंने उसे देखा है और मैंने तुम्हें आशीषित किया है। मित्रों, यह परमेश्वर की ओर से एक सुंदर और आशीषमय वचन है। तो आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले अध्ययन में हम इससे आगे देखेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो और अपनी आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।